أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جمعہ بابرکت ہوتا ہے, لیکن یہ جمعہ جو آج کا جمعہ ہے بطور خاص جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے بہت برکتیں لے کر آیا ہے, کیونکہ یہ وہ پہلا جمعہ ہے جو اس وقت دنیا کے چار بر اعظموں میں براہ راست دیکھا اور سنا جا رہا ہے. یعنی اس جمعے کا یہ خطبہ میری مراد ہے کہ اس وقت دنیا کے چار بر اعظموں میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے. پاکستان میں جماعتیں بڑی دیر سے محرومی کی شکایت کرتی تھیں کہ خطبات کے براہ راست سننے سے محروم ہو چکی ہیں. ایک شخص نے شعروں میں اپنے دل کی حکایت بیان کی تھی کہ کبھی ہم آمنے سامنے بیٹھ کر جمعہ میں شامل ہوا کرتے تھے اور خطبہ سنا کرتے تھے, اب کیسٹوں کے سہارے آواز پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جماعت کی اس گیری اوزاری کو سن لیا, اور اس وقت پاکستان میں ہزارہا لوگ جن کی تعداد ہو سکتا ہے ایک لاکھ کے لگ بھگ ہو, براہ راست مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, میری آواز بھی سن رہے ہیں. اس طرح ان کی ایک دیرینہ پیاس اللہ تعالیٰ نے بجھا دی, اور انہی کی دعاؤں کی برکت ہے اور انہی کا فیض ہے جو آج جاپان میں بھی اس وقت یہ خطبہ سنا جا رہا ہے, سڈنی میں بھی, اور افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی, اور اسی طرح بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, سولومن آئیلینڈ تک بھی یہ تصویر پہنچ رہی ہے اور آواز آ رہی ہے, لیکن غالباً ابھی وہاں مناسب ڈش لگوانے کا انتظام نہیں ہو سکا. لیکن جو جو یہ بات پھیلتی چلی جائے گی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ, دنیا کے مختلف ممالک میں جماعتوں میں بھی براہ راست خطبہ سننے کا شوق بڑھتا جائے گا اور ذرائع مہیا ہوتے چلے جائیں گے, اور انفرادی طور پر بھی گھروں میں انشاءاللہ تعالی کثرت کے ساتھ وہ خواتین اور بچے جو جمعوں پر نہیں جا سکتے, وہ مرد بھی جن کے ہاں جمعے کا وقت نہیں ہوگا, گھر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی خطبات سے فائدہ اٹھا سکیں گے. پاکستان میں اس وقت 4:30, اس وقت تو قریباً 4:45 کے قریب ہوں گے, 5:05, کیونکہ 4 کا فرق ہے, تو 5:45 کے لگ بھگ ہوں گے. ہندوستان میں 6 ہوں گے, بنگلہ دیش میں 6:30, اور انڈونیشیا میں 7:30, اور جاپان میں 9:30, اور آسٹریلیا میں 10:30 یعنی رات کے, اور سالمون آئلینڈ میں 11:30. افریقہ میں مختلف وقت ہیں، اس وقت گیمبیا اور مغربی افریقہ میں ایک گھنٹہ ہم سے پیچھے ہیں. ویسے تو وقت ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن چونکہ یہاں گرمیوں میں وقت آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے وہاں اس وقت 12:45 کا وقت ہوگا، اور مشرقی افریقہ میں 3 گھنٹے آگے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 4:45 کا وقت وہاں ہوگا. تو وقت مختلف ہیں لیکن خطبہ ایک ہی ہے، آواز ایک ہے، تصویر ایک ہے، اور کل عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب انتظام مہیا فرما دیے ہیں. مولویوں کو میں نے پاکستان میں یہ نصیحت کی تھی کہ احمدیت کے رستے نہ روکو، تمہیں نقصان ہوگا، اور خطبات میں خوب کھول کر بیان کیا تھا کہ ایک رستہ روکو گے خدا 20 رستے اور کھول دے گا، اور اگر زمینی راہیں بند کرو گے تو آسمان سے اس کثرت سے فضل نازل ہوں گے، تم کسی زور، کسی برتے پر، کسی طاقت سے ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکو گے. اس لیے بیکار کی کوشش ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، خدا کا غضب کماتے ہو اور فائدہ کچھ بھی نہیں. مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آسمان سے جماعت پر فضلوں کی بارشیں نازل ہوں گی تو کیا تمہاری چھتریاں اور صاحبان ان بارشوں کو روک سکیں گے؟ وہ رحمتوں کے بادل جو افق تا افق پھیلے ہوئے ہوں، اور وہ رحمتوں کے بادل جو آج 4 براعظموں تک پھیل چکے ہیں اور خدا کے فضلوں کی بارشیں برسا رہے ہیں، کہاں ہے وہ دنیا کا مولوی جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے؟ کون سی ان کی چھتریاں ہیں، کون سے ان کے صاحبان ہیں جو خدا کے ان فضلوں کو روک سکتے ہوں؟ اب تو یہ حکایت عام ہو رہی ہے، اب تو ان کے لیے یہی ہے کہ تو سنتا جا شرماتا جا، تمہاری کوششوں نے برعکس نتیجے پیدا کیے ہیں، اور ایسے برعکس نتیجے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھے. اس لیے اپنی طرف سے تو میں نے نصیحت تمہیں یہی کی تھی کہ رک جاؤ، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ اگر رک جاتے تو پھر اللہ کا فضل ہوا یہ نہیں رکے، جو کچھ تمہارا زور ہے کرتے چلے جاؤ، جتنی طاقت ہے، جتنی بساط ہے. جس طرح قرآن کریم نے شیطان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اپنے لشکر دوڑا لاؤ، اپنے گھوڑے چڑھا لاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا، ہم خدا کے بندے ہیں، تمہیں ہرگز ہم پر غلبہ نصیب نہیں ہوگا. جو طاقتیں ہیں برے کار لاؤ، خدا کی قسم تمہیں کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے بندوں پر غیر اللہ کو غلبہ نصیب ہونا ممکن ہی نہیں، ان کے مقدر کی بات نہیں. بس آج اس خطبے میں میں سب سے پہلے تو اپنے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو اپنی طرف سے اور تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پہنچاتا ہوں اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر ہندوستان میں جو سننے والے ہیں ان کو بھی، اور بنگلہ دیش میں بھی، اور انڈونیشیا میں بھی، اور جاپان میں بھی، اور آسٹریلیا میں بھی، افریقہ کے مختلف ممالک میں بھی، جو لوگ اس وقت اس خطبے میں حاضر ہیں یعنی آواز اور تصویر کے ذریعے، ان سب کو میری طرف سے اور تمام حاضرین جمعہ کی طرف سے نہایت محبت بھرا سلام اور دعاؤں کے تحفے ہیں جو ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے چودھری محمد علی صاحب کی ایک نظم الفضل میں چھپی تھی، اس کا ایک شعر نام لیے بغیر دراصل مجھے ذہن میں رکھ کر کہا گیا تھا اور وہ بات کھلی کھلی باہر تھی. وہ شعر تھا کہ کبھی تو اس سے ملاقات ہوگی جلسے پر، کبھی تو آئے گا وہ وصل کے مہینوں میں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ اب تو ہر ہفتے جلسے ہوا کریں گے، اور وصل کے مہینوں کا انتظار نہیں، وصل کے ہفتوں کا انتظار ہے جو اب جاری ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بات پھیلتے پھیلتے اب امریکہ تک بھی جا پہنچے گی اور کینیڈا تک بھی، اور کل عالم پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز گونجت ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادنا غلام کو جو توفیق ملی ہے، آئندہ آنے والے بھی اسی الہام کی برکت سے براہ راست تمام دنیا کو مخاطب ہوا کریں گے، اور زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی جائے گی. अल्लाह ताला की शान है, उसके एहसानात हैं इतने कि हम उनको गिन नहीं सकते, इतने कि सारी जिंदगियां भी खुदा के हजूर कुर्बान कर दें तो इनके शुक्र अदा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजार बंदे बनाए और ना शुक्राना बनाए, क्योंकि अगर हम शुक्र गुजार बंदे बन जाएं तो जो एहसान हम गिन नहीं सकते उनमें से हर एहसान फिर नशोनुमा पाएगा, हर एहसान को फिर बकसरत फल लगेंगे और अल्लाह ताला के एहसानात का सिलसिला लामुतनाही हो जाएगा। बस शुक्रगुजार बंदों का ये इनाम मुकद्दर है जो हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ और आपके फैसले हम सब तक पहुंचा कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ अब जो फैज खुदा के हम पर नाजिल हो रहे हैं, इन्होंने तो बढ़ना ही बढ़ना है और फैलना ही फैलना है और फूलना है और फलना है, तमाम दुनिया में ये बात फैलती चली जाएगी। इसलिए जमात अहमदिया को उन नई जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए जो खुदा के फजलों के नतीजे में हम पर आयद हुई हैं, अपनी जिंदगियों में जहां तक मुमकिन हो रूहानी इनकलाब बरपा करना चाहिए। यही वजह है कि मैंने तबत्तुल इलल्लाह का मजमून बयान करना शुरू किया और जमात को ये समझाने की कोशिश की कि जब तक गैरुल्लाह से कटकर खुदा के नहीं हो जाते या गैरुल्लाह से कटने का सिलसिला शुरू नहीं कर देते, उस वक्त तक हकीकत में हमारे सारे काम खुदा नहीं बनाएगा। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें हम खुदा की बजाय दुनिया की तरफ देख रहे होंगे, वो काम तो खुदा नहीं बनाएगा। खुदा तो वही काम बनाया करता है जिन पर तमाम तर तवक्कुल और इंसार इंसान खुदा की जात ही पर करे। बस तबत्तुल का ये माना है कि दुनिया से अपनी उम्मीदें, अपनी हिरसें, अपने खौफ, अपनी सब तमें काट लो और सिर्फ खुदा ही पर तवक्कुल करो, उसी के हो जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने फजल से बनाएगा, तुम्हारे सारे बोझ उठाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर फरमाएगा, तुम खुदा की आवाज बन जाओगे, तुम्हारी हरकत खुदा की हरकत हो जाएगी, तुम खुदा के वो नुमाइंदा बन जाओगे जिसका गालिबाना मुकद्दर है और कोई दुनिया की ताकत इस तकदीर को टाल नहीं सकेगी। ये वो मजमून है जिसकी तफसीलात में जाकर मैं ये बयान कर रहा हूं आज पिछले दो खुतबों से कि सबसे बड़ा बुत जो तबत्तुल की राह में हायल होता है, यानी दुनिया से कटकर खुदा का हो जाने की राह में जो बुत हायल होता है वो झूठ का बुत है। सबसे ज्यादा इबादत दुनिया में झूठ की हो रही है। वो कौमें जो खुदा की कौमें कहलाती हैं, वो अहले मजाहिब जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जिनकी मजाहिब की बुनियादें इल्हाम पर मबनी हैं, यानी इल्हाम के जरिए वो बुनियादें कायम हुई, उन मजाहिब के मानने वालों की भारी अक्सरियत, इतनी बड़ी भारी अक्सरियत के बाज दफा यूं लगता है कि चिराग लेकर भी ढूंढो तो इस अक्सरियत में इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, झूठ की इबादत करती है। उनका ओढ़ना बिछौना झूठ, उनकी उम्मीदें झूठ से वाबस्ता, खौफ में निजात झूठ से हासिल करने की कोशिश करते हैं, हर बात में झूठ की तमा है जो उनका सहारा बनती है। तो अगर नाम खुदा का ले रहे हों और सजदे बुतों को कर रहे हों तो खुदा ऐसा नादान तो नहीं कि उन सजदों को जो बुतों को किए जा रहे हैं कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि जब तुम जानवर ज़िबा करते हो जबकि खुदा के सिवा किसी और नाम पर, तो वो जान गोश्त और वो कुर्बानियां खुदा को बहर हाल नहीं पहुंचती, वो दुनिया के लिए हैं, दुनिया के लिए ज़ाया हो जाती हैं। बस बाद लोग जो खुदा को मद्देनजर रखकर भी बज़ाहिर खुदा के लिए अपनी इबादतें वक्फ करते हैं, उनकी नमाजों का उठना बैठना खुदा के लिए होता होगा और वो भी बज़ाहिर, उनका गिरजों में जाकर सर्विसेज में शामिल होना भी खुदा की खातिर बज़ाहिर होता होगा, उनका दूसरे इबादत गाहों में जाकर खुदा के सामने सर झुकाना भी बज़ाहिर खुदा के लिए होगा। लेकिन मसाजिद से बाहर आने के बाद जब सारी जिंदगियां गैरुल्लाह के लिए वक्फ हो जाएं तो अल्लाह ताला की गैरत उस थोड़ी सी इबादत को कभी कबूल नहीं करेगी जो उसके लिए अलग की गई हो। लेकिन जब मैंने बज़ाहिर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो अमदन मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो लोग जो मुवाहिद हैं उनकी भी इबादतें अक्सर खुदा के लिए नहीं होती और उनके ख्यालात उनको इबादतों में घेर लेते हैं, उनके फिक्र दामनगीर हो जाते हैं, कई किस्म के जिन हैं जो उनको चिमट जाते हैं और इबादत का अक्सर हिस्सा बगैर मगज के रह जाता है। तो जब मुवाहिदीन का ये हाल है तो जो मुवाहिद नहीं है, जो सरासर शिर्क की इबादत करते हैं, उनका अंदाजा करें कि उनका क्या हाल होगा। इसलिए जरूरी है कि जमात अहमदिया अपने हाल से पहले खुद वाकिफ हो, हम में से हर फर्द अपने नफ्स का तजिया करे, अपने ख्यालात अपनी नीयतों का तजिया करे और अपना मकाम मालूम करे कि वो कहाँ खड़ा है, ये पता करे कि कितनी उसकी इबादत अल्लाह के लिए खालिस है और कितनी गैरुल्लाह के लिए है, उसकी जिंदगी का कितना हिस्सा खुदा के जिक्र में गुजरता है और कितना गैर की बातें जपते हुए वक्त करता है। ये जाहरी जपना मुराद नहीं, मुराद ये है कि ख्यालात अगर गैर से चिमटे हुए हों तो नाम खुदा का भी लिया जा रहा हो तो दरअसल वो गैर ही का लिया जाता है। हमने ऐसे तस्बीह करने वाले भी देखे हैं जो उंगलियों से तस्बीह खुदा की कर रहे होते हैं और जुबान से गंदी गालियां दे रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं, नफसानी ख्यालात में मुबतला होते हैं। तो अल्लाह ताला जाहिर को नहीं देखता, वो हकीकत पर नजर रखता है। ये मालूम करने के लिए कि खुदा की किस हकीकत पर नजर है, आपकी अपनी नजर उसी हकीकत पर होनी चाहिए, पर आपकी निगाह और खुदा की निगाह के फैसले मुख्तलिफ होंगे। इसलिए इस तफरीकों को दूर करें। जब तक आपकी नजर सच्ची नहीं होती आप अपनी जात का खुदा की नजर से मुतालिया कर ही नहीं सकते, आपको इल्म हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के नजदीक आपका क्या मकाम है। बस इसी वजह से मैंने तफसील में जाकर बताना शुरू किया कि झूठ का बुत है सबसे बड़ा बुत जो इबादत के खालिस होने की राह में हायल है, इसको तोड़ो, और इसको तोड़ो तो अक्सर बुत टूट जाएंगे। लेकिन और भी हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में मिलता है, जिनकी तफासील अहादीस में बयान हुई हैं। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन उनमें से एक एक मौजू को लेकर मैं आपके सामने खोल कर ये बातें पेश करूंगा। इस वक्त झूठ के मजमून के सिलसिले में ये तीसरा खुतबा है। आपको याद होगा पिछले खुतबे में मैंने ये बयान किया था कि वो कौमें जो झूठी हैं उनकी इक्तसादियात में बरकत नहीं है, और सिर्फ ये फर्द का मामला नहीं, झूठ कौमों के रिज्क को छीन लेता है। और बज़ाहिर इंसान झूठ को रब बना रहा होता है लेकिन हकीकत में ये ऐसा जालिम रब है, ऐसा धोखेबाज रब है कि एक हाथ से कुछ देता है तो दूसरे हाथ से उससे बहुत ज्यादा वापस ले जाता है। चुनांचे मैंने इसकी मिसालें दी, यहां दीनदार या गैर दीनदार का फर्क नहीं है, वो कौमें जो सच्ची हैं उनके रिज्क में जरूर बरकत पड़ती है। चुनांचे मशरिक़ बईद की कौमों की मिसाल आपके सामने रखी, जापान की मिसाल सामने रखी कि वो खुदा को भी नहीं मानते, यानी भारी अक्सरियत नहीं मानती, लेकिन सच बोलते हैं। और अल्लाह ताला के फजल से जहां जहां जिन कौमों में सच बोला जा रहा है वहां रिज्क में बहुत बरकत है। तो हमारे तीसरे दुनिया के ममालिक को भी इससे नसीहत पकड़नी चाहिए। इस खुतबे के बाद ये हदीस मेरे सामने आई जिसमें यही मजमून, ये मजमून भी बयान हुआ है। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हजरत अबू हुरैरा की रवायत है, कि वालिदैन से नेक सलूक उम्र को बढ़ाता है, झूठ रिज्क को कम करता है, और दुआ कज़ा व कदर को बदल देती है। तीन बातों में इंसानी जिंदगी के सारे मसाइल हल हो गए। इंसान अपनी उम्र और सेहत के लिए कितनी कोशिशें करता है, और ये नुक्ता बयान फरमाया कि वालदैन से नेक सलूक उम्र को बढ़ाता है। हमारे यहां बहुत से वालदैन हैं जो बच्चों की शिकायत अगर जुबान पर नहीं लाते तो दिल में जरूर रखते हैं, और बड़े महरूम हैं वो बच्चे जिन जो माँ बाप की खिदमत की उम्र को पहुंचते हों, या जब खिदमत की तौफीक मिले माँ बाप जिंदा हों और फिर उनकी खिदमत न कर सकें। तो ये नसीहत भी ज़िमनन आपके सामने है कि अगर आप अपनी उम्र और सेहत और अपने बच्चों की उम्र और सेहत کہ ہاں ہاں ہوں تو اپنے ماں باپ کی جس حد تک توفیق و خدمت کریں. جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے, بڑھاتا نہیں ہے, یہ بات بہرحال سچی ہے. اس لیے جھوٹ کے ذریعے رزق کمانے والوں کو لیے یہ انذار ہے, یہ وعید ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ رزق ان کا بڑھ رہا ہے, لیکن نہ انفرادی طور پر بالآخر جھوٹ کے سے کمائے ہوئے رزق میں برکت رہتی ہے, نہ قومی طور پر برکت رہتی ہے. اور پھر دعا قضاء و قدر کو بدل دیتی ہے. یہ عجیب نقطہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے. اے میرے فلسفیوں, زور دعا دیکھو تو. قضاء و قدر کے خلاف انسان کی کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی. اسی کو غیر ممکن کہا جاتا ہے. جب قضاء فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کو ٹالنا ناممکن ہو جاتا ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مدرسے میں تعلیم پائی, آپ ہی کی حکمت کی باتیں آگے پہنچائیں. چنانچہ یہ بات بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا بیان فرمودہ نقطہ ہے کہ قضاء و قدر کو دعا بدل سکتی ہے. بس جس شخص کو قضاء و قدر پر کمندیں ڈالنے کا اختیار حاصل ہو جائے, اس سے بڑھ کر اس کو کیا چاہیے. اور یہ کمندیں دعا کی کمندیں ہیں جو عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور آسمان کے کنگروں پر پیوستہ ہو کر خدا تعالیٰ کی تقدیر کو جنبش دیتی ہیں. اور جب آسمان پر تقدیر جنبش میں آتی ہے تو زمین کی تقدیریں اس کے تابع کام کرتی ہیں, ان کی مجال نہیں کہ ان سے الگ کوئی رستہ اختیار کر سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدزنی سے بچو, کیونکہ بدزنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. یہ بات وہ ہے جس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں جہاں واقعہ عفق کا ذکر ہے اور بھی بعض مقامات پر اس مضمون پر روشنی پڑتی ہے کہ جو شخص زن کی بنا پر کسی کو داغدار کرتا ہے وہ لازمن جھوٹا ہے, خدا کے نزدیک وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. یہ بحث ہی نہیں آتی کہ وہ واقعہ ہوا تھا, ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. زن کے ذریعے کسی کو متہم کرنے کا خدا نے کسی بندے کو حق نہیں دیا. اور دنیا کے اکثر فساد بدزنی کے ذریعے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف نظر تھی جو اس بات تک پہنچی اور یہ خدا ہمارے سامنے کھول دیا. ورنہ قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں, عام پڑھنے والوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ اصل مراد کیا ہے. وہ مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی اور تفصیل سے یوں بیان فرمائی, بدزنی سے بچو کیونکہ بدزنی سخت قسم کا جھوٹ ہے. اور بدزنی کی مزید قسمیں یوں بیان فرمائی ہیں, ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں نہ رہو, اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو. اب یہ عجیب لطیف کلام ہے کہ بظاہر بدزنی اور تجسس دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عارفانہ نظر اس بات کو پا گئی کہ اگر پہلے بدزنی نہ ہو تو تجسس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تجسس اور دوسرے کی عیب کی تلاش کرنا یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پہلے بدزنی ضروری ہے. جس پر آپ نیک زنی کرتے ہیں کبھی اس کا بھی تجسس کیا ہے؟ کبھی اس کے عیب بھی تلاش کیے ہیں؟ اس کے برعکس بات ہوتی ہے, جس کے ساتھ محبت ہو, جس کے ساتھ پیار ہو, جس پر انسان حسن زن کرتا ہو, اس کی برائی دکھائی بھی دے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. امکان نظر آئے, احتمال کسی بات کا نظر آئے تو سو دوسرے بہانے ڈھونڈتا ہے اس بات کو نہ ماننے کے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی یہ قسم بھی بیان فرما کر ہم پر بے حد احسان فرمایا کہ بدزنی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, اس سے بچو. اگر اس سے بچو گے تو معاشرہ تمہارے شر سے بچ جائے گا اور معاشرہ امن میں آ جائے گا. اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو, اچھی چیز ہتھیانے کی ہرس نہ کرو, حسد نہ کرو, دشمنی نہ رکھو, बेरुखी न बरतो। अब ये बजाहिर सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इनकी बुनियाद एक ही बात में है कि किसी शख्स से मोहब्बत की बजाय नफरत होना, किसी शख्स से प्यार के ताल्लुक की बजाय अजनबियत का ताल्लुक या दूरी का ताल्लुक या दुश्मनी का ताल्लुक होना। कुरान करीम ने इस मजमून को बयान करते हुए ऐसे लोगों का हाल बयान किया है कि जब मुसलमानों को कोई फतह मिलती है और उनको गनीमत हाथ आती है तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, और उस तकलीफ का इजहार इस तरह करते हैं, काश हम भी वहां होते तो हम भी हिस्सा पाते, और जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो कहते हैं शुक्र है हम वहां नहीं थे, वरना हमें भी तकलीफ पहुंच जाती। तो दरअसल बुनियादी तौर पर यह तालीम दी जा रही है कि एक दूसरे से ताल्लुक कायम करो, एक दूसरे का भाई बनने की कोशिश करो। मोमिन इखवा होते हैं एक दूसरे के, और जो शख्स समझता है कि ये मोमिन मेरे भाई हैं, अगर ये समझने के बावजूद ये बातें उसमें पाई जाती हैं तो उसका भाई होने का तसव्वुर झूठा है। ये इलामतें हैं बीमारियों की जो दिलों में पोशीदा हैं, और इन इलामतों को जाहिर और बाहिर करके हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बीमारियों को पहचानने का एक अजीम नुस्खा हमें अता फरमा दिया। अब देख लीजिए, जो बदज़नी करता है वो जिससे प्यार हो मोहब्बत हो उस पर बदज़नी नहीं किया करता, जो किसी के ऐब जोई जोई करता है बुराइयों की तलाश में रहता है अगर मोहब्बत और प्यार हो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अच्छी चीज हथियाने के लिए अपने प्यारे से मुतल्लिक ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। जितना प्यार बढ़े उतना दिल ये चाहता है कि जो चीज मुझे अच्छी मिली है मैं उसको दे दूं, और जो चीज अच्छी खुद नसीब हो रही हो और अपने प्यारे के पास ना हो वो बाज़ दफा वो अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है, उसे इंसान को खुशी की बजाय तकलीफ होने लगती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक रवायत है कि जब आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बाहर से आला किस्म की चक्कियां आईं और बहुत ही उम्दा आटा पहली दफा जब उन चक्कियों से निकला तो हजरत आयशा सिद्दीका के हजूर पेश किया गया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम की उस वक्त नुमाइंदा थी। जब आपने उस आटे की बनी हुई रोटी का पहला लुक्मा मुंह में डाला बेख्तियार आंखों से हंसू जारी हो गए। आपकी खादिमा ने अर्ज किया कि तो इतना अच्छा आटा है, इससे लुत्फ उठाने की बजाय आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरा आका मेरा बाबू जो जिंदा था उस वक्त यह आटा मुयसर नहीं था, दंगे हो में आपके दान से ईद हुए, वो मोटा झूठा आटा जो हम बनाया करते थे उस वो दांतों के में उसके टुकड़े बाज दफा गंदम के टुकड़े वगैरह ये जौ के टुकड़े आ जाते थे और तकलीफ पहुंचती थी, इसलिए ये आटा मेरे लिए राहत का नहीं गम का मूजिब है। ये मोहब्बत की निशानी है, ये प्यार की सच्ची इलामत है। बस जिस भाई से प्यार हो उसकी चीज की तरफ लालच की नजर इंसान डाल ही नहीं सकता। अगर अपने भाई की तरफ आप लालच की अच्छा अच्छी चीजों की तरफ आप लालच की नजर डालते हैं तो ये थर्मामीटर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें हमारे हाथों में थमा दिया है, इसमें अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। ये मोहब्बत का टेम्परेचर जाहिर नहीं करेगा, नफरत का टेम्परेचर जाहिर करेगा। फरमाया हिर्स ना करो, अच्छी चीज हथियाने की हिर्स ना करो, हसद ना करो, और मजमून खुलता चला जा रहा है। दुश्मनी ना करो, फिर फरमाया बेरुखी ना बरतो। पहले तो मजमून आगे बढ़ रहा था, अब उसका एक और किनारा पेश फरमा दिया कि दरअसल जब तुम अपने किसी भाई से बेरुखी करते हो तो वहां भी मोहब्बत का फुकदान है जो आगे फिर इन सब चीजों में तब्दील हो सकता है। तभी अंबिया को खुदा ताला ने ये अपने दुश्मनों को ये जवाब समझाया कि जिनको तुम्हारी आंखें हकीर और घटिया जानती हैं मैं उनसे वो सलूक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुदा की खातिर मुझे कबूल किया है, इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत और प्यार है। बस खुदा की खातिर ईमान लाने वालों के लिए ये बहस ही नहीं रहती कि कोई किस कौम से ताल्लुक रखता है, किस तबके से ताल्लुक रखता है, अमीर है कि गरीब है, किस हाल में है, उससे बेरुखी नहीं बरत सकता। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक गैर मुस्लिम सरदार से महवे गुफ्तगु थे और उस वक्त एक नाबीना मुसलमान आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उसने बात में दखल देना शुरू कर दिया। अब ये बात में दखल देना अखलाक से गिरी हुई बात है, लेकिन आहदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से कि चूंकि नौ मुस्लिम गैर मुस्लिम हदायत की बातें सुनने आ रहा है, उस पर बुरा असर न पड़े, आपको समझाना भी चाहा, लेकिन दिल में यह भी ख्याल था कि इस गरीब की दिल शिकनी होगी। तो कैसा अजीब लतीफ अंदाज इख्तियार फरमाया, अपने माथे पर हल्के से बल डाले, जिससे उस देखने वाले गैर मुस्लिम को यह मालूम हो गया कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पसंद नहीं फरमा रहे कि कोई और शख्स आके हमारी बातों में दखल दे। और चूंकि वो दखल देने वाला अंधा था, इसलिए उसको बल दिखाई नहीं दिए, उसकी दिल शिकनी नहीं हुई। मगर इसके बावजूद कुरान करीम में ये अल्लाह ताला ने आ सलम को मुखातिब करते हुए, आपका जिक्र करते हुए फरमाया, अबसा व तवल्ला अंजाहुल्लामा, कि देखो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे पर बल डाला और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, इसलिए कि एक अंधा उसके पास अपने दीन की बातें पूछने के लिए आया। पुराने मुफस्सरीन ने तो ये लिखा है कि ये नाराजगी का इजहार है, लेकिन हजरत मुस्लिम मऊद ने इसकी तफसीर बहुत ही लतीफ बयान फरमाई है और फरमाया कि नाराजगी का इजहार नहीं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहायत ही आला दर्जे के अखलाक का जिक्र है। और वही जिक्र है जो मैं बयान कर चुका हूं कि अंधे को जुबान से कुछ नहीं कहा, इसलिए जब उसकी दिल शिकनी नहीं हुई तो कैसे कहा जा सकता है कि ये अखलाक से किसी माने में भी गिरी हुई बात थी। और मेहमान की इज्जत अफजाई फरमा ली जब उसकी तरफ से मुंह एराज किया और माथे पर बल एक आध बल आया होगा, जिसका जिक्र खुदा तआला ने फरमाया है। तो मोहब्बत के तकाजे जब इस तरह मुतजाद भी हो जाएं तो एक लतीफ रूह किस शान के साथ उन तकाजों को अदा करती है। लेकिन गरीब से गरीब और आंखों से माजूर के लिए भी आहज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिल शिकनी की कोई बात नहीं की। बस मैं ये बात इसलिए खोल रहा हूं कि बाज दूसरे मुसलमान भी इस खुतबे को सुनते हैं, वो भी ये तफसीरें सुनते हैं, ये गलत इल्जाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन आप पर नाराजगी के इजहार के तौर पर खुदा ताला ने यह वाकया बयान फरमाया है। आपने तो कोई अखलाक से गिरी हुई जरा सी गिरी हुई बात भी नहीं की, बल्कि नहायत आला दर्जे के अखलाक का इजहार फरमाया जब अपने गरीब गुलाम की दिलदारी फरमाई और उसको उसकी दिल शिकनी से एराज करते हुए आने वाले मेहमान की इज्जत भी फरमाई, इज्जत अफजाई भी फरमा दी। और इस बारीक पुल से रात से बगैर लड़खड़ाए हुए गुजर गए। तो मोहब्बत के तकाजे बाज़ दफा मुतजाद भी हों तो ज़हीन और लतीफ इंसान, लतीफ जज्बात और लतीफ फिक्र का मालिक इंसान उन सब तकाजों को बयक वक्त पूरा कर सकता है और अल्लाह ताला उसे फरमाता है। लेकिन कुजा ये कि एक इंसान दूसरों से बेरुखी बरतने का आदि हो, बाज दफा ये चीज बड़ी बड़ी ठोकरों का मुझे बन जाती है। मुझे एक साहब ने खत लिखा कि फला बड़ा आदमी, उसको तो बड़े आदमी से कुछ ज्यादा ही मुतासर था बेचारा, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहा हूं, हर बात में उसकी तायद नहीं कर रहा। फला बड़े आदमी को मैं रब्बा लेके गया और वहां फला साहेब मस्जिद में बातें कर रहे थे और मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया और उनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा आदमी है गोया के, और वो अपनी बातों में मसरूफ रहे। तो वाकया यह है कि एराज में यह बात भी दरअसल दाखिल है। जब कोई शख्स किसी के पास पहुंचता है, हर इंसान बातों में मसरूफ हो, कुछ ना कुछ उसकी तरफ इल्तिफात चाहिए, कुछ ना कुछ इशारे से ही अर्ज कर दे आदमी कि मैं अभी फारिग होता हूं, या अस्सलामुअलैकुम कह के बात करके फिर इजाजत लेकर दूसरी बातों में मसरूफ हो जाए। तो जमात अहमदिया को बहुत आला अखलाक का नमूना दिखाना चाहिए। और ये जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेरुखी न बरतो, इससे आप बचेंगे तो इससे बात की चीजों से भी बच जाएंगे। ये पहला ठोकर का कदम है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके दिल में कोई रिया, कोई झूठ, कोई गैर के लिए मोहब्बत की कमी तो नहीं है, और इस तरह आप अपने नफ्स के अंदरूने की बारीक बातों से भी आगाह हो सकते हैं। फिर आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और रंग में इसी मजमून को बयान करते हुए, जिस तरह उसने हुक्म दिया है अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो, जैसा खुदा ने हुक्म दिया है। मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और वो उसको जुल्म नहीं करता, उसे रुसवा नहीं करता, उसे हकीर नहीं जानता। अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए आपने फरमाया तकवा यहां है, तकवा यहां है। बयान करने वाले की तशरी है, यानी मकाम तकवा दिल है। ये भी मजमून दुरुस्त हो सकता है, मगर मैं तो इस मजमून को इस तरह देख रहा हूं कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तकवा की आमाजगा है। अगर किसी ने तकवा से आशनाई हासिल करनी है तो उस दिल से आशनाई हासिल करें। तकवा के अंदाज सीखने हैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की धड़कनों से वो अंदाज सीखे। तो तकवा यहां है, तकवा यहां है। 100% दुरुस्त बात है कि मोहम्मद मुस्तफा के दिल ही का तकवा था जो बाद में लाखों करोड़ों दिलों का तकवा बन गया। और हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम जो फरमाते हैं इन चश्मे रवां के बखल के खुदा दे हम या कतरे ही दे बाहरे कमाले मोहम्मद अस, तो वाकयतन एक कतरा समंदर बन जाया करता है। और सारी दुनिया में आज से उस जमाने से लेकर आज तक 1400 साल से कुछ ज्यादा अरसा हो गया, करोड़ों अरबों मुसलमानों को जो तकवा की तौफीक मिली थोड़ी या बहुत, वो उसी दिल से फूटा था जिसकी तरफ उस वक्त हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली इशारा कर रही थी और फरमा रहे थे तकवा यहां है, तकवा यहां है, तकवा यहां है। बस हमें उस दिल से तकवा सीखना चाहिए और उस दिल की अदाओं से आशनाई के बगैर हम उस दिल से तकवा कैसे सीखेंगे। पर सीरत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसन उन हिस्सों के मुताले का शौक ज़ौक पैदा करना चाहिए और जस्तजू के साथ वो मुताले करना चाहिए जहां आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ ताल्लुकात की आजमाइशों में अपने सीरत के जलवे दिखाते रहे। वो आजमाइशों के वक्त हैं जो हम सब पर आते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो उन आजमाइशों पर उस तरह पूरा उतरते हैं जैसे आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आजमाइशों पर पूरा उतरे। बस अगर तकवा सीखना है तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात पर गहरी नजर डालना और महज सीरत का सरसरी मुताला ना करना बल्कि गहरी नजर से उस दिल में डूब कर उतर कर आपकी सीरत का मुताला करना जरूरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो बातें आप सुनते हैं वो एक आम इंसान की बातें नहीं हैं, इसलिए जब आप वो बातें सुनते हैं तो सती हुस्न से मुतसर होकर वहीं बात न छोड़ दिया करें। एक इंसान बाग से गुजरता है, फूलों का रंग देखता है, खुशबू भी सूंघता है, उसने भी जरूर उस बाग से कुछ फैज पाया, लेकिन एक शहद की मक्खी है जो उसके दिल में उतरती है, उसका रस चूसती है, उसका फैज कुछ और रंग रखता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बहुत गहराई है और बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उस दिल में उतर कर तकवा का रस लेने की कोशिश करें जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में धड़कता था। फरमाया एक इंसान के लिए यही बुराई काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई की तहकीर करे। हर मुसलमान की तीन चीजें दूसरे मुसलमान पर हराम हैं, उसका खून, उसकी आबरू, उसका माल। अक्सर मुसलमान ममालिक में तो अब खून भी हलाल हो गया है और दूसरी दो चीजें तो पहली हलाल थी। बदनसीबी यह है कि पाकिस्तान में शायद इस वक्त दूसरे तमाम मुसलमान ममालिक की निस्बत भाई का खून ज्यादा अज़ां हो चुका है। भाई का तो और मामला है, दिन हमेशा हर रोज ऐसी अंदोहनाक खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसी ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, अपने बाप को कत्ल कर दिया, अपनी बहन को कत्ल कर दिया, अपनी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया। और रोजमर्रा का दस्तूर बन चुका है कि जरा सी अदना सी नाराजगी पर इंसानी खून ले लिया जाए, और छोटी छोटी बात पर यह धमकी देना कि हम तो जान ले लेंगे, कोई खुदा का खौफ बाकी नहीं रहा। इसका आगाज हुजूर फरमाते हैं बेरुखी से हुआ था। जब सोसाइटी में एक दूसरे से बेरुखी पैदा हो जाए तो जो सफर इख्तियार करती है सोसाइटी, ये उसका उसकी आखिरी मंजिल है। तो बेरुखी को मामूली ना समझें। जब आपके पास कोई आता है उसकी इज्जत अफजाई करें, अगर वक्त ना भी हो तो कुछ जहां तक मुमकिन है उसने सलूक के जरिए उसके दिल में ये बात जागृति करने की कोशिश करें कि आप उससे बरतर नहीं हैं, आप उसकी खातिर चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की मजबूरी है। अगर इस बुनियाद पर आप कायम हो जाएं तो फिर अगली शर की इमारत, अगली खैर की इमारत लाजमन तामीर होगी और शर के हर पहलू से आप बचते चले जाएंगे। लेकिन यहां अगर गलत पत्थर रखा गया और बेरुखी के ऊपर आपके अखलाक की तामीर हुई तो इसकी बालाई मंजिलों पर फिर खून लिखा हुआ है। उस मंजिल तक पहुंचना फिर लाजिमन एक वक्त की बात है। कुछ अरसे के बाद जो कौमें इस नसीहत से बेइत्नाई करती हैं उस मंजिल तक भी पहुंच जाया करती हैं। तीन चीजें मैं दोबारा बताता हूं हराम हैं: मुसलमान का खून, उसकी आबरू और उसका माल। आबरू तो इतनी हलाल हो चुकी है कि रास्ता चलते एक दूसरे की सरों से टोपियां उछाली जाती हैं, बेइज्जतियां की जाती हैं, सख्त कलामी की जाती है, गंदी गालियां दी जाती हैं। हमारे मुल्क में देहात में तो बदनसीबी से हल चलाने वाला और कुछ नहीं तो जानवरों को ही गालियां देता चला जाता है, और बड़ी गलीज और गंदी गालियां। खासतौर पर पाकिस्तान को मैं नसीहत करता हूं, हिंदुस्तान को भी, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नसीहत की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है जिसकी भारी अक्सरियत हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करती है। अपनी जुबान को पाक करें, अपने भाई को अपनी जुबान के शर से बचाएं, तो अल्लाह ताला के फजल के साथ बाकी सब बुराइयां भी फिर मिटनी शुरू हो जाएंगी। और जहां तक माल का ताल्लुक है, ये तो यूं मालूम होता है कि हर गैर का माल हलाल है। पहले मौलवियों ने फतवे देने शुरू किए कि मुसलमान का माल तो हराम है लेकिन गैर मुस्लिम का माल बेशक खाओ, लूटो, जो मर्जी करो। जब एक दफा बदी की राह खुल जाए तो फिर वो कदम किसी एक जगह रुक नहीं सकते, बदी तो लाजमन फिर आगे बढ़ती है। अब ये हाल है कि हरेक का माल हलाल हो गया है, अपना माल है जो हराम है क्योंकि उसमें हराम की आमिजिश हो चुकी है। शायद ही कोई ऐसा माल होगा जो वाकईतन हलाल हो। बस अमलन ये सूरत है कि गैर सब हर गैर का माल हलाल बन गया है, जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करा दिया था, और अपना माल जिसको हलाल बनाने पर जोर दिया था वो हराम हो चुका है। कैसी बदनसीबी है। इस एक हदीस में तमाम दुनिया के मुआशरों की इस्लाह के समान मौजूद है। ये तीन बातें हैं जिन्हें अगर मुसलमान अपना लें तो मुसलमानों के मुकद्दर बन जाएं, अगर गैर अपना लें तो उनकी तकदीरें बदल जाएं। और अल्लाह ताला के फजल के साथ कतई नजर इसके कि किसी का मजहब यह है क्या है, अगर आ हुजूर की इन तीन नसीहतों पर कोई अमल करे तो उसकी दुनिया लाजमन संवर जाएगी। और जो तीन बातें हैं दुनिया संवारने की बयान फरमाई गई हैं, ये तीनों नेकी की बातें हैं, और नेकी के नतीजे में फिर और नेकियां पैदा होती हैं। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन तीन नसीहतों पर अमल करने के जरिए जिन कौमों की दुनिया संवरेगी उनका दीन भी संवर जाएगा। दुनिया ही नसीब नहीं होगी उनकी, उनको आखिरत भी नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला अगर गैरों को तौफीक नहीं दे रहा तो अहमदियों को तो कम से कम ये तौफीक होनी चाहिए कि जिस रसूल की मोहब्बत और इश्क का दावा करते हैं, जिसकी खातिर इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, जिसका कलमा पढ़ने की कि जुर्म की सजा के नतीजे में जेलों में जाते हैं, माल लूटे जाते हैं, बाजारों में उनको धक्के पड़ते हैं, गालियां दी जाती हैं,
थानों में बुलाया जाता है, उन जिस रसूल की मोहब्बत में ये दुख उठा रहे हैं उस रसूल के फैज से अपनी दुनिया और अपनी आकबत संवारते क्यों नहीं है। इन बातों पर अगर इन नसीहतों पर अमल करेंगे तो उस मोहब्बत की जो सजा दी जा रही है उससे हजारों लाखों गुना उस मोहब्बत का फैज आपको पहुंचेगा। बस बड़ी बदनसीबी होगी कि मोहब्बत के नतीजे में सजा तो पा रहे हैं और मोहब्बत के फैज से महरूम है। एक और मौके पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है कि बड़े गुनाह ये हैं, अल्लाह ताला का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि आहदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए जिनमें वरासत की मलकियत के बारे में झगड़ा था। ये झूठ का मजमून है और झूठी कसम की बात पर फिर ये आगे बात चल पड़ती है। बहुत से मुसलमान ममालिक खसूसन हिंदो पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में इस सूरत हाल ये है कि भाई का माल हत्याने के लिए, गैर का माल हत्याने के लिए अदालतों में बेफिक्र और बेधड़क झूठी कस्में खाई जाती हैं और उसके नतीजे में जो कुछ हासिल होगा वो क्या होगा, उस सिलसिले में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी उम्मे सलमा बयान करती हैं कि आ हजूर के पास दो आदमी आए जिनमें विरासत की मलकियत के बारे में झगड़ा था और मामला पुराना हो जाने की वजह से सबूत किसी के पास ना था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मैं इंसान हूं और हो सकता है कि तुम में से कोई ज्यादा लसान हो और बात को बड़े उम्दा अंदाज और लहजे में बयान कर सकता हो। वो सोसाइटी झूठ से पाक थी लेकिन झूठ की बारीक किस्मों में चर्ब जुबानी के जरिए गलत हक हासिल करना भी शामिल है। बस आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारीक झूठ की किस्म का जिक्र करते हुए फरमाया, हो सकता है चर्ब जुबान हो, उम्दा तरीक पर बात बयान करे और मैं उससे मुतासर होकर कोई राय कायम कर लूं और उसके हक में फैसला दे दूं, हालांकि हक दूसरे फरीक का हो। ऐसी सूरत में इस फैसले से फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने भाई का हक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो एक आग का टुकड़ा है जो मैं उसे दिला रहा हूं। अगर वो लेगा तो कयामत के दिन वो सांप बनकर उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर दोनों की चीखें निकल गईं और हरेक ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सारी जायदाद मेरे भाई को दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना आला दर्जे का ईमान था, कैसा यकीन था, कैसी मोहब्बत थी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितना कामिल यकीन था उन वईद पर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर जारी हुआ करते थे कि क़यामत के दिन ये तुम्हें मिलेगा। कितने हमारे कज़िये हैं किस आसानी से निपट जाएं अगर इस हदीस पर इंसान निगाह रखे और अपने मामलात कज़ा में पेश करते हुए वादे झूठ तो दरकिनार अदना से चर्ब जुबानी के जरिए भी गैर का हक लेने से इज्तनाब किया जाए। ये अगर हो जाए तो हम जमात अहमदिया की कज़ा का अक्सर काम जो है वो हल्का हो जाए और मुकदमों तक नौबत ही ना पहुंचे। दरअसल इस मिजाज के लोग मुकदमाबाजी करते ही नहीं, उस तक पहुंचते ही नहीं, मुकदमों से पहले पहले ही उनके मामलात निपट जाया करते हैं। फिर हजूर ने फरमाया कि अच्छा तुम यूं करो कि अंदाजे से जायदाद के दो हिस्से कर लो और फिर कुर्रा डाल लो और जिसके हिस्से जो जायदाद का हिस्सा है वो ले ले, और अगर वो समझता हो कि कुर्रे में भी दूसरे को कुछ ज्यादा मिल गया है तो फिर उसको छोड़ दे, उस ख्याल को दिल से निकाल दे कि भाई को कुछ ज्यादा मिल गया है। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से बड़े इब्तला से टल गए। अब मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम का एक इक्तबास आपके सामने पेश करता हूं। फरमाया, आज दुनिया की हालत बहुत नाजुक हो गई है, जिस पहलू और रंग से देखो झूठे गवाह बनाए जाते हैं, झूठे मुकदमा करना तो बात ही कुछ नहीं, झूठे असनाद बना लिए जाते हैं। ये आज से 100 साल पहले की बात है। अब अंदाजा करें کہ اس زمانے میں جبکہ مقابلتاً جھوٹ بہت ہی کم تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ سے کیسی کراہت تھی کہ وہ تھوڑا سا جھوٹ بھی جو دکھائی دیتا تھا اس سے طبیعت کو گھن آتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ہر طرح جھوٹ پھیل رہا ہے. آج کے زمانے میں جو حال ہو چکا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. یہی باتیں 100 گنا بڑھا لیں تو آج کی حالت یہ ہے. فرماتے ہیں کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے. کیسا پیارا کلام ہے، سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے، طرز ایسی اختیار کریں گے کہ سچ کا پتہ نہ لگ جائے. جو سچ بولنے والے بھی ہیں وہ سچ سے دامن بچا کر اس رنگ میں بیان کر دیں گے کہ سچ کی طرف کوئی بات اشارہ نہ کر جائے. اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے؟ آپ تو وہ دین لے کر آئے تھے جس کا میں نے ابھی اس حدیث میں ذکر کیا ہے. لیکن آج عملاً کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھے ان سے کوئی، کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا، اس سے پرہیز کرو. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کو ملایا ہے، جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی. جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی یعنی بت کے ذریعے سے نجات چاہتا ہے، یہ مراد ہے. جیسا کہ ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی. کیسی خرابی آ کر پڑی ہے. اگر کہا جاوے کہ یہ کیوں بت پرستی کرتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. آج آپ کسی جگہ یہ بات کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ یہی جواب ملے گا. ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے، گزارا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، مجبوری ہے. یعنی اپنے معبود کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ جس نے جھوٹ کو معبود بنا لیا ہو وہ اس بات میں تو سچا ہے کہ اس کا بت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات میں جھوٹا ہے کہ انجام کار وہ اس کے کسی کام آئے گا. جھوٹ کا بت ہمیشہ دغا کرتا ہے، انجام کار ضرور نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے اور بھلائی اور فتح اسی کی ہے. خدا تمہیں نعمت وحی اور الہام اور مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا. وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں. لیکن جو شخص گستاخی کی راہ سے خدا پر جھوٹ باندھے گا اور کہے گا کہ خدا کی وحی میرے پر نازل ہوئی حالانکہ نہیں نازل ہوئی، اور یا کہے گا کہ مجھے شرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا نصیب ہوا حالانکہ نصیب نہیں ہوا، تو میں خدا اور اس کے ملائکہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خالق پر جھوٹ باندھا. بس وہ لوگ جو خدا کی مخلوق پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے، بالآخر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، انہی میں سے وہ بد نصیب پیدا ہوتے ہیں جو خدا پر جھوٹ باندھنے لگتے ہیں. اور وہ لوگ جو خدا کے سچوں پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ بھی دراصل خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاک بندوں پر جھوٹ باندھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا پر جھوٹ باندھا گیا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ، مگر تمام مسلمانان عالم کو، بلکہ تمام دنیا کو جھوٹ کی نجاست اور جھوٹ کی بت پرستی سے نجات بخشے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر